ओम शांति। आज बड़े ही खुशी की बात है कि हम सभी को ज्ञान रत्नों से भरपूर करने के लिए हमारे बीच आदरणीय जयंती दीदी, जो इंदौर जोन की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, और आप हमारे इंदौर जोन की जोनल जूरिस्ट कोऑर्डिनेटर भी हैं। ऐसी आदरणीय दीदी जी का हम करतल ध्वनि से हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आपकी वाणी में जो माँ सरस्वती का वास है, जीवन में जो मधुरता, स्नेह और ईश्वरी पालना देने का जो गुण है, तो आज हम सभी को ज्ञान रत्नों से आप भरपूर करेंगी। ओम शांति।
ओम शांति। अभी जो समय चल रहा है, कलयुग, जिसको घोर कलयुग भी कहा जाता है, इस समय सभी मनुष्य अति दुखी, अशांत, परेशान, अनेक प्रकार के बाधा विघ्न, रोग बीमारी, टेंशन, डिप्रेशन सब में हताश और निराश हो चुका है, और वो अपने आप को महसूस करता है कि हम कैसे जिए, कैसे जीवन में सुख शांति को प्राप्त करें, मेरा ये दुख दर्द कब मिटेगा। इस प्रकार के हालत में वो भटकता रहता है, उपाय खोजता है कि कहीं से कुछ मिले। ऐसे इंसान को जब कोई जाकर कहता है कि आप अगर अपने जीवन में हमेशा के लिए सुख शांति चाहते हो तो आप हमारे पास आओ, तो वो इस बात को मान लेता है और फिर वो पहुंच जाता है कहां? ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाने लगता है, राजयोग सीखता है, धीरे धीरे 7 दिन का कोर्स समाप्त करता है, उसका जीवन बदलने लगता है, उसके जीवन में खुशी आने लगती है और वो अपने आप को महसूस करता है कि अब मैंने पा लिया, जो मुझे पाना था वो रास्ता मुझे मिल गया। अब उसे क्या मिला, कौन सा रास्ता मिला, क्या मिल गया उसको? कोई हाथ में दिखाने की चीज नहीं है कि मुझे ये चीज मिल गया, लेकिन उसका चमकता हुआ, दमकता हुआ मुखड़ा जो भी देखता, उसके आस पड़ोस के रहने वाले, उसके संबंध में आने वाले सभी महसूस करते कि इसको कुछ मिल चुका है, इसका वो हालत अब नहीं है जो एक हताश, निराश, बेहद दुखी इंसान का दिखता था, अब इसको कुछ मिल गया है। लोग भी उसको कहने लगते और वो खुद भी महसूस करता है मुझे मिल गया। क्या मिला उसे? उसे मिला परमात्मा का दिया हुआ वो श्रेष्ठ ज्ञान कि तुम एक आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, जिसे तुम देखकर अपना परिचय देते हो ये तुम हो ही नहीं, तुम एक चैतन्य शक्ति हो जिसे तुम खुद भी इन आंखों से नहीं देख सकते हो, इसे तुम महसूस करो। और परमात्मा ने उसको कहा कि तुम अपने आप को एक दिव्य सितारा समझो, एक चमकता हुआ सूक्ष्म बिंदु, दिव्य सितारा समझो। जैसे ही उसको ये आत्मा का ज्ञान मिला, आत्म अनुभूति करने लगा, उसको खुशी मिलने लगी। और इसके साथ साथ उसके जीवन का परिवर्तन देखकर उसके घर वाले भी, जो पहले उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, संबंधों में कटुता थी, अनेक प्रकार की बातें आती जाती थी, रोज झगड़े होते थे, घर में भी परेशान तो बाहर में भी परेशान, लेकिन अब जब ज्ञान मिलने लगा, उसका शांत आचरण देखकर घर वाले भी उसकी कदर करने लगे और उसका जीवन सुखमय होने लगा। उसको जो दुख घर से मिलता था वो तो मिलना बंद हो गया, बाहर में भी उसको खुशी मिलने लगी क्योंकि उसका आचरण बदलने लगा। जो हम हर रोज मांग करते हैं, भगवान हमें सुख दो, हमें शांति दो, हमें आनंद दो, प्रेम दो, शक्ति दो, हर दिन हम भगवान से ये मांग करते हैं। अब ये मांग करना बंद हो गया, क्यों? क्योंकि हमने जाना यही तो मेरी ओरिजिनलिटी है, आत्मा के जो सात गुण है वो यही तो है, और आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है। शांति हम मांग करते हैं लेकिन आत्मा तो स्वयं ही शांत स्वरूप है। तो जब उसको अपनी ओरिजिनलिटी का भी पता पड़ा तो वो इन चीजों को भी अनुभव करने लगा, शांति, प्रेम, आनंद, और उसका जीवन बदलने लगा पहले से। सिर्फ इतना ही नहीं, उसको अब ये भी मालूम पड़ा कि आत्मा के पास दिव्य शक्तियां हैं, जिन शक्तियों के होने से हम आदि काल में कभी भी दुख, दर्द, कष्ट कुछ भी महसूस नहीं करते थे, कुछ भी नहीं होता था, किसी प्रकार का वार भी नहीं होता था, क्योंकि हम शक्तिशाली थे। और ये मालूम पड़ा हमारे पास अष्ट शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों को यूज करना भूल गए, उन शक्तियों को भी भूल गए। हमारे पास जो सहन करने की शक्ति थी, सामना करने की शक्ति थी, समाने की शक्ति थी, सहयोग देने की शक्ति थी, आदि आदि, इन शक्तियों को अब हम कार्य में लेने लगे। हम क्या करते, जहां सहन करना है वहां हम सामना कर देते हैं। घर में, परिवार में हम अक्सर सामना करते हैं, सहन करना तो भूल गए। आज आप देखते होंगे घर में बड़े बूढ़े कोई बात करते हैं छोटों के लिए और वो क्या जवाब देते हैं, कैसे उनको अपमानित करते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, ये तो आप सब अनुभव करते हो वर्तमान समय। तो ये सब हमको मालूम पड़ने लगा, जहां सहन करना है वहां सहन किया, जहां सामना करना है अन्याय का वहां सामना भी किया, लेकिन वो सामना भी हम सभ्यता से करने लगे। ऐसा नहीं कि मारपीट या गुस्से में बोलना या जोश में, आवेश में, वो नहीं रहा, लेकिन हम बहुत अच्छे से डील करने लगे। कोई भी बात कहना हो, किसी को रोकना हो, टोकना हो, तो भी बहुत प्रेम से बोलने लगे। जिसको कहते हैं सभ्यता की भाषा, उस ढंग से पेश आने लगे। तो बाहर में भी, घर में भी, हर जगह हमारी कदर होने लगी। तो वो व्यक्ति अपने आप को खुश नसीब महसूस करने लगा और उसकी खुशी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। घर में, बाहर में, हर जगह वो अपने आप को ठीक रीति से चलाने लगा, जिसको हम कहते हैं ज्ञान स्वरूप अवस्था। जिस इंसान के पास ज्ञान नहीं होता है उसको लोग क्या कहते हैं, अनाड़ी कहते हैं ना, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करना है, कैसे बैठना, कहते हैं तुम तरीके से बैठना नहीं जानते हो, तुम ठीक से चलना नहीं आता है तुमको, तुम खाते पीते कैसे हो, जानवरों की तरह खाते हो, नहीं ऐसे कहते हैं ना। ज्ञानी इंसान में हर चीज का एक तरीका होता है, उस तरीके से चलते हैं। तो हम अब तरीके से चलना सीख गए तो वो इंसान भी खुश रहने लगा क्योंकि उसको अब सब तरीका आने लगा। अब परमात्मा का दिव्य ज्ञान वो महसूस करके खुश रहने लगा। उसके जीवन का जो सफर है वो ऐसा लगता है कि मैं चलता नहीं हूं, अब तो मैं उड़ने लगा हूं। और जब उसकी ये अवस्था हुई तो वो अपने कारोबार में भी बहुत नाम कमाने लगा क्योंकि वहां उसकी जो भाषा थी, उसकी जो वृत्ति थी, वो बहुत पवित्र शुद्ध दृष्टि वृत्ति हुई। लोभ लालच खत्म हो गया, किसी के साथ बर्ताव भी ठीक होने लगा, तो वहां भी उसकी कमाई भी बढ़ने लगी। लोग उसके आचरण से प्रभावित होते थे, उसके पास आते थे। अब भगवान ने उसको कितना दे दिया, क्या दिया? सिर्फ एक आत्मा का ज्ञान कि तुम कौन हो, सिर्फ इतना जानने से परिवर्तन आने लगा। अब क्या हुआ, परमात्मा ने इसके साथ और भी दो चीज दी और जब वो दो चीज हमारे जीवन में आई तो हम शूद्र से ब्राह्मण बने। शूद्र अर्थात नीच। शूद्र किसको कहते हैं? नीच को कहते हैं। उसका खान पान रसम रिवाज आचार व्यवहार सब कुछ एक नीचता को लेकर के होता है। लेकिन जब हम ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण अर्थात जिसका जन्म पवित्र, जिसका कर्म पवित्र, जिसका धर्म पवित्र, सब कुछ पवित्र हो गया। हमारा जन्म मुख वंशावली ब्राह्मण बने और भगवान ने हमें कहा कि तुम एक आत्मा हो, तुम मेरे बच्चे हो। जो विशेष बात कही, मेरे बच्चे हो। तो जन्म हमारा पवित्रता का हुआ, धर्म पवित्रता हुआ और कर्म भी अति श्रेष्ठ कर्म हुआ, सबका जीवन बनाना, सबके जीवन को भी पावन बनाना, ये श्रेष्ठ कर्तव्य भगवान के साथ करने लगे और हम क्या बन गए? द्विज। जीते जी नया जन्म हुआ, द्विज माना दूसरा जन्म हो गया। तो कितना परिवर्तन आया जीवन में। अब भगवान ने कौन सी दो चीजें दी? अगर ये दो चीजें हमारे पास नहीं होती तो हम ब्राह्मण नहीं बनते। वो दो चीजें हैं दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र। डिवाइन नॉलेज दिया भगवान ने, जो ज्ञान हमने कहीं पढ़ा नहीं था, किसी ने सुनाया नहीं था, कहीं से प्राप्त भी नहीं हुआ था। और वो डिवाइन इनसाइट दी कि तुम उसको देखो जिसे लोग नहीं देख पाते हैं, तुम देखो सूक्ष्म आत्मा को और तुम्हारा पिता जो अति सूक्ष्म है उसको देखो। तो परमात्मा ने जो नॉलेज दिया, उस नॉलेज के आधार से हमने अपने आप को भी जाना और अपने आप को देखना शुरू किया कि मैं भी एक अति सूक्ष्म दिव्य सितारा हूं। ये शरीर तो नश्वर है लेकिन मैं आत्मा ही अजर अमर अविनाशी हूं। दिव्य बुद्धि के आधार से वो अपने आप को जाना, ये भी जाना कि तीनों लोक क्या है, त्रिकाल क्या है। दिव्य बुद्धि के आधार से हम बन गए त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी। तीनों लोकों को जाना कि हम कहां के रहने वाले, वास्तव में आत्मा परम धाम की रहने वाली, और सूक्ष्म वतन को भी जाना और इस समय स्थूल वतन में हम साकार शरीर का आधार लेकर रह रहे, ये भी जाना। अब इसके साथ साथ तीनों कालों का भी ज्ञान मिला, वर्तमान भूत और भविष्य। जब ये सारी बातें जान लिया पहचान लिया तो दिव्य बुद्धि के आधार से हम आदि मध्य अंत को जान गए, आदि में हम क्या थे। और जैसे ही ये बात समझ में आ गई तो 5000 साल के बातों को स्पष्ट हम समझ गए कि हम पहले ऐसे थे और आज ऐसे बन गए। और घड़ी घड़ी हम ये दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा उड़ने लगे, मैं क्या थी, और उस स्वर्ग को हम देखने लगे हैं, जिसको कोई देख नहीं सकता, जिसके बारे में परमात्मा ने हमें बताया, उसको हम स्पष्ट अनुभव करने लगे कि हम पहले ऐसे थे और फिर से हमें ऐसा बनना है। तो दिव्य बुद्धि की उड़ान होने लगी। हम इस तरह से प्रतिदिन अपने घर जाते, अर्थात परम धाम, बाबा से मिलन करते और खुशी से भरपूर हो जाते, पूरी शक्ति भगवान से ले लेते और सारा दिन जो हमारी दिनचर्या है उसमें हम अपने आप को बहुत समर्थ शक्तिशाली अनुभव करते, क्योंकि बार बार लगता है बाबा मेरे साथ है। आज कोई भी व्यक्ति बोलता है ना, बाबा मेरे साथ है, कुछ नहीं होना, कोई घबराने की जरूरत नहीं, कोई बात आती भी है तो क्या बोलते हैं, बाबा साथ है। तो उड़ान भरने लगे। लेकिन अगर ये दिव्य बुद्धि की उड़ान में कोई प्रकार से मनमत, परमत और परदर्शन आता है तो फिर उड़ान भरना बंद हो जाता है। मनमत, परमत, परदर्शन, इसको उसको देखने लगे, दूसरों की बातें अच्छी लगने लगी, परमात्मा की बात को भूल गए। और जब इस प्रकार हम इन चीजों में अटक जाते हैं तो उड़ान बंद हो जाता है। और फिर क्या आता है, कुछ न कुछ कमी आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, खुद कहने लगते क्या करे, माया आ गई, कहीं ना कहीं झगड़ा कर लेते, विरोध कर लेते, जोश में आ जाते, आवेश में आ जाते, कुछ न कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो हमें बोला गया है उस श्रीमत को हमने छोड़ दिया और हम दूसरों को देखने लगे, उनकी बातें अच्छी लगने लगे। तो जैसे लिफ्ट होता है ना, ये दिव्य बुद्धि भी लिफ्ट है जो हमें चढ़ा रहा है, तो वो जो लिफ्ट है ना, वो लिफ्ट चढ़ेगा नहीं, क्योंकि जो बीच में माया, परदर्शन, परचिंतन, परमत, ये जो आई, ये वो लिफ्ट को रोक देगी। जैसे लिफ्ट खराब हो जाती है ना, और जब खराब हो जाती है तो ना ऊपर ना नीचे, वो बीच में लटक जाएगा, कुछ नहीं कर सकेंगे। तो हमारी भी गति उस समय कैसे हो जाती, ठहर जाएंगे एक जगह, ना हम आगे बढ़ पाएंगे ना पीछे जा पाएंगे। और जब ऐसी हालत होती है तो क्या करते हैं, लिफ्ट बंद हो जाता है तो क्या करते हैं, फिर सीढ़ी चढ़ो, मेहनत करो। तो फिर मेहनत करने लगते हैं कि क्या हो गया, ऐसा क्यों हो गया, ये भूल कैसे हो गई, ये चीज बिगड़ कैसे गया, तब ये सब बातें आती है। और तब फिर से वही दुख, वही दर्द, वही परेशानी फिर से आने लगती है। इसीलिए इस लिफ्ट को बहुत ध्यान पूर्वक हमें चलाना है, और उसको चलाने की जो विधि है वो है श्रेष्ठ संकल्प। हम अपना संकल्प हमेशा श्रेष्ठ रखें। कहते हैं ना, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। और हम श्रेष्ठ श्रेष्ठ सोचते हैं क्योंकि श्रेष्ठ मत मिली है, श्रीमत माना ही श्रेष्ठ मत। देखिए, हम भक्ति में गाया करते थे, सबको सुमत दे भगवान, लेकिन वो सुमत क्या था, वो श्रेष्ठ मत क्या है जिसे भगवान को देना पड़ेगा, वो हमें नहीं मालूम था। और ये भी नहीं मालूम था कि वो सुमत कब मिलेगा, ये भी नहीं मालूम था, लेकिन अब वो बातें मालूम पड़ गई। तो ये है भगवान का दिया हुआ दिव्य बुद्धि, और इसके साथ क्या दिया, दिव्य दृष्टि, डिवाइन इनसाइट। और जब डिवाइन इनसाइट मिल गया तो हम अपने आप को आत्मा के रूप से देखने लगे, दूसरे को भी आत्मा रूप से देखने लगे, शरीर का भान छूटने लगा। शरीर का भान जब छूटने लगा, देह भान जब हटा, तो हमारा जीवन पवित्र बना, हमारी दृष्टि वृत्ति में चेंज आ गई और हम बिल्कुल स्पष्ट अपने आप को जान लिए, पहचान लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया में साइंटिस्ट भी देखता है, विचार करता है और आगे बढ़ता है, आविष्कार करता है, लेकिन वो भी उन्हीं चीजों को देख सकता है जो पांच तत्वों की प्रकृति के अंदर है, सूर्य चांद तारा आकाश के अंदर है, लेकिन आकाश के परे की चीज को साइंटिस्ट नहीं देख सकता और ना उस पर वो विचार कर सकता है, ना जा सकता है। लेकिन हमें जो दृष्टि मिली, इस दृष्टि के आधार से हम चांद सूर्य तारा गणों से भी पार जाने लगे। सिर्फ इतना ही नहीं, तीनों कालों तक जाने लगे। तीन लोग तो जाते ही रहे, कभी परमधाम जाते, कभी सूक्ष्म वतन जाते, लेकिन तीनों कालों को भी स्पष्ट रीति से देख लिया कि मेरा भूत मेरा भविष्य क्या है। और जिसको ये बातें मालूम हो जाए, वो जीवन में कभी मुझेगा कभी नहीं मुझेगा। तो उसको मिला दिव्य शक्तिशाली नेत्र। देखो, भगवान ने जो हमें नेत्र दिया वो 100% शक्तिशाली दिया, जरा सा भी उसमें कमी नहीं दी कि कमजोर नेत्र मिला होगा किसी को, नहीं, उसको बिल्कुल इतना श्रेष्ठ नेत्र दिया। और इस नेत्र के द्वारा हम अपने आप को देखने लगे। क्या, कैसे देखने लगे? कि मेरा आदि स्वरूप क्या है, जिसे हम भूल गए थे और जिसको भूलने की वजह से आज हम दुखी अशांत हैं और कहते हैं हमें सुख दो, लेकिन कौन सा सुख चाहिए, कब हम सुखी थे ये भी तो नहीं मालूम, लेकिन कहते जरूर हैं कि सुख दो, शांति दो। वो सुख शांति कैसी और कब थी हमारे जीवन में, वो नहीं मालूम। तो हम अपने आप को देखने लगे कि मेरा आदि स्वरूप, वो सजा सजाया डबल क्राउन वाला दिव्य देवी देवताओं का वो स्वरूप हम घड़ी घड़ी देखने लगे अपने आप को, और हम सदा खुश रहने लगे। और जिसको शक्तिशाली नेत्र मिला है वो सदा ही अपने आप को इस रीति से देखता रहता है और अपना पुरुषार्थ करता रहता है। जब ये नेत्र कमजोर होता है तो कमजोर नेत्र किस चीज को देखता है? कमजोरी के चीजों को देखता है, वो तमो प्रधान चीजों को देखेगा, क्योंकि उसके नेत्र कमजोर हैं। और जो श्रेष्ठ शक्तिशाली नेत्र वाला है वो सदा ही सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा को देखेगा, अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करेगा, अच्छी चीज देखेगा, अच्छी बातों को ग्रहण करेगा, लेकिन जिसकी दृष्टि कमजोर है वो कमजोर चीजों को देखेगा। नहीं, कई लोग कहते हैं कभी आपस में साथ बैठो तो जो श्रेष्ठ नेत्र वाला होगा, शक्तिशाली नेत्र वाला होगा, उसकी बातें आप सुनो, वो कौन सी बातें करेगा? वो ज्ञान की बातें करेगा, ज्ञान की चर्चा करेगा, अपने पुरुषार्थ की बात करेगा, पुरुषार्थ कैसे आगे बढ़ाए उसकी बात करेगा। लेकिन जो कमजोर नेत्र वाला होगा वो कहेगा वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे, फलाने को भी हम जानते हैं वो बहुत पुराना है लेकिन वो आज तक भी ऐसा ही है। और जो सुनता है वो सोचता है कि इतना पुराना ये अगर ऐसा है तो मैं तो ठीक हूं, मैं तो अभी अभी आया हूं ना, तो उसका भी पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। तो भगवान ने हमें दिया दिव्य नेत्र, दिव्य बुद्धि, और जब ये दोनों चीजें मिल गई तो हमारा जीवन खुशहाल। अब हमें ये देखना है कि हम जो देख रहे हैं, देखने का पर्दा, और देख रहे हैं तो कौन सी चीजें देख रहे हैं, क्योंकि यहां हमको देखना जो चीज दिखाई दे रहा है ये नहीं देखना है, इन आंखों से नहीं देखना है, हमको देखना है दिव्य दृष्टि से। तो दिव्य दृष्टि से हम देखेंगे कैसे, जब हमारी स्मृति सही होगी, हमारी स्मृति, हमारी बुद्धि में अगर वो बातें नहीं है जो बातें बाबा बता रहे हैं कि तुम ऐसे थे, वो बातें अगर नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे। और उसके साथ चाहिए पर्दा, स्क्रीन, किसमें हम देखेंगे, स्क्रीन चाहिए। वो पर्दा कौन सा होना चाहिए, वो है निश्चय का पर्दा। निश्चय नहीं होगा तो हमें दिखेगा नहीं, स्मृति में नहीं होगा तो भी नहीं दिखेगा। तो दोनों चीज शक्तिशाली चाहिए, पर्दा भी बिल्कुल, निश्चय बिल्कुल पक्का होना चाहिए। निश्चय में परसेंटेज नहीं, अगर निश्चय में परसेंटेज होगा तो भी हम ठीक से नहीं देख सकेंगे। तो इसीलिए ये पर्दा और स्मृति, स्मृति का मणका और निश्चय का पर्दा। मणका माना पॉइंट्स, स्मृति में वो पॉइंट्स हो, और निश्चय का पर्दा, तो हम इस चीजों को अच्छी तरह से देख सकेंगे, समझ सकेंगे। परंतु कभी कभी ये पर्दा सही रहते रहते भी डिफेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाता है। और उस डिफेक्ट का कारण क्या है, क्यों पर्दे में हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं? बहुत अच्छा देख रहे थे पहले जब आए, बाबा की बातें सुनी, बहुत अच्छा मजा आ गया, लेकिन अब धीरे 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 ये ढीलापन क्यों आ गया, वो खुशी, वो उमंग, उत्साह, कैसे ये धीरे धीरे ढीलापन आया, तू पता नहीं चला। लेकिन उसका भी कारण है, उसका कारण क्या, अपने आप को जांच करना चाहिए कि जो श्रीमत मुझे मिल रही है प्रतिदिन, वो श्रीमत हम ले रहे हैं या उस श्रीमत को लेने में हम कुछ ढिलाई कर रहे हैं। कई कहते हैं सुबह पानी भरना पड़ता है, क्लास में नहीं आए, मेहमान आ गया क्लास में नहीं आए, कहीं जाना आना हो गया, दिनचर्या बिगड़ गई, थोड़ा लेट हो गए, क्लास में नहीं गए। आप देखोगे जो रेगुलर पंचुअल मुरली सुनता है, उसे ग्रहण करता है उसके चाल चलन में, और जो कभी से भी जाता है, दोनों में अंतर। यहां तक कि आप देखोगे जो सुबह जाने वाले हैं और जो शाम को जाने वाले हैं, उनमें भी अंतर दिखेगा। तो जो श्रीमत है, वो श्रीमत जो सवेरे सवेरे बाबा ने हमें दिया, वो श्रीमत सुबह जो मिला, वो श्रीमत हमें प्रतिदिन लेना है और उस पर हमें ध्यान देना है। तो जहां श्रीमत का परहेज हमारा नहीं हो पाया ठीक से, वहां हमारा ये पर्दा और स्मृति कमजोर पड़ जाएगा। इसीलिए हमें क्या चाहिए, यहां पर आप श्रीमत का, श्रीमत रूपी दुआ कहो, दवा कहो या परहेज कहो, करो, इसको करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, और तब जाकर के हमको फिर से वो शक्तिशाली नेत्र मिल जाएगा और हम फिर से देखने लगेंगे, फिर से पुरुषार्थ तीव्र हो जाएगा। तो जो शक्तिशाली नेत्र वाला होता है ना, वो पहले से ही जान लेता है, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि से देख रहा है, समझ रहा है कि बात ऐसी है, इसके आगे पीछे क्या है, क्योंकि वो दिव्य दृष्टि से देख रहा है, सामान्य आंखों से नहीं मालूम पड़ेगा, दिव्य दृष्टि। तो वो उन बातों को, उस माया के सूक्ष्म बातों को वो समझ लेता है और वो अपने आप को ठीक कर लेता है, अपने आप को पहले से ही सावधान कर लेता है, इसलिए वो माया में फंसता नहीं है, उसको पता चल जाता है, क्योंकि उसके पास कई शक्तियां हैं, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, तो उसको ये मालूम पड़ जाता है कि ये बात क्या है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, और वो सावधान हो जाता है, वो बच जाता है। तो कई बाबा के भोले भाले बच्चे भी ऐसे कई उल्टी पुल्टी बातों में फंस जाते हैं, उसका कारण यही है कि प्रतिदिन की मुरली मिस है। और बाबा के वो बच्चे आप देखोगे हमेशा ही ठीक रास्ते पर, उसका ट्रैक बदलता नहीं, ठीक रास्ते पर चलता जाता है, क्यों, क्योंकि वो प्रतिदिन की मुरली सुन रहा है, उसको मालूम पड़ गया फलाना व्यक्ति जो है वो इस प्रकार की बातें करता है और कुछ ना कुछ बातों में प्रलोभन देता है, और हम अगर गए तो गए काम से। तो इस प्रकार से जीवन बदल गया। तो इसको क्या कहेंगे, जादूगर की जादूगरी कहेंगे ना? कौन सा जादू लगाया? ऐसा जादू लगाता है कि वो मानव को देव बना देता है। और आज तक हमारे ऊपर कौन सी जादू थी? माया वाली जादू। जो ये रावण का जादू था ना, इसने हमें क्या कर दिया? मानव से दानव कर दिया। हमारे अंदर आसुरी आचरण आ गए, आसुरी गुण आ गए, जिसे अवगुण कहेंगे, और जिसके कारण हमें अति दुख मिला, दर्द मिला, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, अपने आप को चलाने की शक्ति नहीं रही, घड़ी घड़ी यही कहते आप क्या करें, कुछ नहीं होगा, हम निराश हो गए। लेकिन जैसे ही भगवान ने हमारे ऊपर जादू डाला तो हम क्या बन गए, हमारे अंदर आत्मविश्वास जागा और हम आगे बढ़ने लग गए, जीवन में खुशी आ गई। तो इसको कहेंगे ना जादूगर की जादूगरी। तो ऐसी जादू ठीक है ना? अगर लोग कहते हैं कि आपके ऊपर जादू लग गया तो कोई गलत नहीं कहते, सचमुच का जादू है। और ऐसा जादू आप देखो, पूरी दिनचर्या बदल गई, खान पान बदल गया, रहन सहन बदल गया, आचरण बदल गया, रसम रिवाज भी बदल गए। जिन रसम रिवाज को हम बहुत मानते थे, करते थे, आप कहते हैं ये सब करके क्या फायदा है, कोई फायदा ही नहीं है। अभी बाबा ने दो चार दिन पहले की मुरली में कहा ना कि देखो, जो दाह संस्कार करते हैं और उसके बाद जो करते हैं क्रियाकर्म, तेरहवीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो चला गया वो तो चला गया, उसके लिए कुछ भी करना बेकार है। तो अपने ज्ञान में देखो अपन क्या करते हैं, कुछ नहीं, दाह संस्कार कर दिया, जो भी उनको करना था उनको अच्छे से कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं, उसके बाद बाबा को याद करो, ना कोई पंडित बुला रहे हैं, ना खटिया दे रहे हैं, ना पलंग दे रहे हैं, ना जूता दे रहे हैं, ना छाता दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे ना, जो देना करना है बाबा को कर दिया, भोग लग गया, बहुत बढ़िया, सब ब्राह्मणों ने खाया, स्वीकारा और सब खुश हो गए, दुआ देने लगे, ठीक है ना? तो हर चीज में आप देखो बाबा परिवर्तन कर रहे हैं। सत्युग में होगा क्या ये सब? ठीक है, दाह संस्कार हो गया, उसके बाद कुछ नहीं, कोई याद करेगा किसी को? कोई किसी को याद नहीं करेगा। और यहाँ तो देखो कहाँ सवा महीना मना रहे, तो कहाँ साल भर भी मना रहे, रोते ही जा रहे हैं, रोते ही जा रहे हैं। तो बाबा ने देखो अपने आप को कितना खुश कर दिया। तो ये है भगवान की जादूगरी। और इस भगवान को हम अगर सदा अपने साथ रखते हैं तो उनकी अनुभूति हमें कदम कदम पर मिलती रहेगी। सबको मिला है यहाँ, ऐसा कोई भी नहीं होगा बाबा का बच्चा जो कहेगा मैं जाता तो हूँ परंतु मुझे कुछ मिला नहीं, कोई नहीं कहेगा। जो अभी अभी आया हुआ है वो भी कहता है नहीं, यहाँ बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत शांति मिलती है, कुछ तो मिल रहा है और जीवन बदल रहा है, माना बहुत कुछ मिल गया। जीवन कहाँ बदलेगा, जहाँ मिलेगा वहीं तो बदलेगा ना, वहीं उसकी हर बातें बदल जाएगी। तो यहाँ अनुभव, कदम कदम पर अनुभव सबको होता है। और बाबा कहता है बच्चे इस समय तुम मुझे साथ लेकर के चलो, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग घूमूं, तुम ही संग सब कुछ करूं, तो आप देखोगे आपको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहेगी, ऐसा लगेगा जैसे बाबा ही ले चल रहा है, हम खुद नहीं चल रहे हैं, जैसे वही ले चल रहा है। और ये पक्की बात है कि जैसे कहा हुआ है कि पांडवों के साथ भगवान था, तो पांडवों के साथ भगवान है और वो हमारे साथ साथ चलता है, हमारे साथ रहता है, हमारे किसी भी बात में हमें डायरेक्शन भी देता है, कदम कदम पर वो हमें एहसास कराता है कि ये कदम गलत है, ये कदम सही है। तुम इस मार्ग पर चलो। जैसे महाभारत में बताते हैं ना कि भगवान पांडवों के साथ साथ रहता था और इस कारण वो पांडव हमेशा विजयी रहे, कभी पराजय नहीं हुआ उनका, सदा विजयी, क्योंकि वो उन्हीं का ही कहना मानकर चलते रहे। तो आज भी देखो इस समय भी कितने प्रकार के अनुभव होते रहते हैं जीवन में। देखो एक इस समय भी कई ऐसी बातें सामने आती हैं, भाई बहने सुनाया करते हैं। पांच भाई जा रहे थे गाड़ी में, कार से कहीं घूमने गए थे, तो घूमते घामते वो कोई पहाड़ी पर चढ़े थे, शायद कुछ ऐसा था। वो वहां पर चढ़े और गाड़ी चढ़ी पहले, फिर ढलान आया तो गाड़ी नीचे उतरने लगी। उतरते उतरते जब खूब तेज स्पीड होने लगी तो ड्राइवर ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो रुकी नहीं, उसका ब्रेक भी फेल हो गया और संतुलन उसका बिगड़ गया। गाड़ी आगे बढ़ने लगी, बहुत तेज गति से नीचे की ओर जाने लगी। अब एकदम से लगने लगा कि ये गाड़ी अब गई, अब हम पद नहीं बचेंगे। पांच थे उसमें से तीन सो गए थे, दो जग रहे थे, एक ड्राइवर था एक उसके बाजू में बैठा, वो कहने लगा अरे अरे इसको रोको रोको रोको, पर वो रुके कैसे। जब देखा कि अब कोई उपाय नहीं, गाड़ी बहुत तेज गति से नीचे की ओर जा रही, तब उसने चिल्लाया बाबा बचाओ। और क्या हुआ, कैसे बचे, गाड़ी जा रही थी लेकिन बीच में एक बड़ा सा पत्थर आ गया और गाड़ी वहीं रुक गई। किसने बचाया, ये बड़ा पत्थर कहां से आ गया, पहले से नहीं था बड़ा पत्थर, अगर देख लिया होता तो खुद ही सोचते कि अब रुक जाएगी गाड़ी, नहीं था कुछ भी, बड़ा पत्थर आ गया और गाड़ी रुक गई और वो निकले, बच गए। कितने प्रकार के अनुभव मैं भी अनुभव करती हूँ। अभी अपने इंदौर में खूब बारिश, इतनी बारिश की बारिश रुके ही नहीं, लोग सब तंग हो गए, परेशान हो गए। जो भी क्लास में आते वो कहते क्या करें, इसका कुछ उपाय तो होना चाहिए, इतनी बारिश, सब कुछ बेकार हो रहा है। घर में जो गमले थे ना, वो गमले में जो पौधे थे वो भी अब देखो धीरे धीरे सड़ने लग गए। अरे ये सब बेकार हो रहा है, कुछ भी नहीं बचेगा, सब खत्म हो रहा है, सब लोग रोज रोज। तो हम सब ने सोचा कि कुछ करना चाहिए, बाबा ही इसका उपाय करेगा। तो हम लोग 10-15 लोग एक ही संकल्प लेकर बैठ गए। हमने कहा काम तो करना ही है, ये सेवा वो सेवा, अच्छा आंधी पानी तूफान चल रहा है, बारिश हो रही है, लेकिन सेवा नहीं रुकी, इधर जाना उधर जाना, क्लासेस है, ये है वो है, कई जगह क्लासेस, सब लोग निकल जाते रोज, भींगते भींगते भी जा रहे हैं कि अब अगर अपन नहीं जाए तो क्लास ठप ना हो जाए, तो बहुत दिन से बारिश चल रही है, कुछ हो ना जाए तो घबराहट होती है। और तो हमने कहा 2 घंटा अपन समय निकालते हैं और इस 2 घंटे में हम एक ही संकल्प लेकर 10-15 लोग बैठ गए, एक ही संकल्प, बस उसको अनवरत अपन एक ही संकल्प को कर रहे हैं और सब बोल रहे हैं मुंह से, एक ही संकल्प को मुंह से सभी मिलकर के बोल रहे हैं, सभी मिलकर के 2 घंटा तक बढ़िया सबने किया। 2 घंटा बाद अपन उठ गए, बारिश जो चल रही थी तेज कम हो गई, रुकी नहीं, अभी अभी थोड़ा कम हो गया, बिल्कुल मद्दा मद्दा सा होने लगा, लोग आ रहे थे लेकिन अभी उतनी परेशानी से नहीं आ रहे। अब धीरे धीरे रात हुआ तो रात को देखा बारिश पूरी तरह से बंद हो गई थी, सुबह धूप निकली, सब खुश हो गया, सबने कहा देखो बाबा ने सुन लिया। अच्छा दिन में फिर धीरे धीरे फिर बादल आया, फिर से घनघोर बारिश हुई, पर अब की बारिश होके बंद हो गई। ऐसे 2-3 दिन तक चला तो सबने कहा अरे बारिश रुक नहीं रही है, फिर हमने कहा इसको कंटिन्यू करते हैं, प्रतिदिन हम उसी संकल्प को लेकर पूरे क्लास के भाई बहने बैठने लग गए, 1 घंटा पूरा 1 घंटा भट्टी जैसे बैठने लग गए। 3-4 दिन के बाद पूरी तरह से बंद हो गई, धूप निकलने लगी, सब बोले वाह धूप आई, खुश हो गए सब। तो बाबा हर बात का अनुभव कराता है कि तुम अगर मुझे लेकर के मेरे को लेकर के काम करो तो सब तुम्हारा सफल होगा। और हम देखते हैं कदम कदम पर यह अनुभव होता है कि बाबा बिल्कुल साथ दे रहा है और हर काम हमारा पूरा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे भाई बहनों के कितने कितने अनुभव होते हैं कि जब हम बाबा को लेते तो बाबा हमारा साथ देता है और हर प्रकार से बाबा सुरक्षित भी रखता है। तो ये है जादूगर की जादूगरी, जो जीवन में हमारा परिवर्तन ला करके हमें खुशहाल कर दिया, हमें सदा के लिए खुशी दे दी। लेकिन इस खुशी को बरकरार रखने के लिए हमें बाबा की श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। बाबा की श्रीमत हमारा जीवन चेंज कर चुका है, इसलिए उसे बहुत बहुत थैंक्स देना है। थैंक्स बाबा हर पल पल पे बोलना है। ठीक है, ओम शांति।
अब हमें और क्या।